मेरा कुल है सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल। तो दुनिया में भी कुल होता है, जाति होती है, ऐसे हम सबसे उत्तम कुल के बाबा के बच्चे हिस्ट्री हॉल में बहुत एक दिल को शक्ति मिलता है जब हम हिस्ट्री हॉल को याद करते हैं। इसी स्थान पर साकार में इस स्थान पे हमारा प्यारा मीठा हम सभी के जीवन का बहुत बड़ा दुलारा बाबा इस स्थान पे बैठ के बाबा उसमें प्रवेश होके कितनी आत्माओं को इसी हिस्ट्री हॉल में बाबा बैठ के जब बच्चों को दृष्टि देते थे, बाबा अपने महावाक्य उचारते थे, मुरली सुनाते थे, तब बहुत थोड़े थे। जैसे अभी हम थोड़े बैठे हैं ना, तभी बाबा के टाइम पे भी थोड़े थे, लेकिन बाबा के मुरली के अंदर इतना नशा रहता था, इतना शक्ति रहता था, ऐसा लगता था थोड़े से बच्चों को कि बाबा तो सारे विश्व के सामने बोल रहे। बाबा को थोड़े से बच्चे, यही साकार में दिखने वाले बच्चे ही बाबा को नहीं दिखते थे। बाबा का तो विजन कहाँ तक था। तो यही हिस्ट्री हॉल है जहां पर बाबा ने हमें भी मौका दिया, उसी बाबा से हम यहाँ सुन रहे हैं। ये बहुत बड़ा कोटों में कोई में भी कोई को ये सौभाग्य है हम पांडव भवन पहुंचना और हम बाबा के इस पांडव भवन के कर्म भूमि पर यज्ञ की जो बाबा की तपस्या भूमि है इस पर हम आना और यहाँ पर सेवा का चांस मिलना, भट्टी का चांस मिलना, तो ये सब किसकी दुआ है, किसकी कृपा है। बाबा बोला मैं थोड़ी कृपा करता हूँ, कृपा माना करो और पाओ, तुम करो तुम पाओ, यही कृपा है। तो बाबा हमें हम बच्चों से इतना श्रेष्ठ कर्तव्य कराते हैं, तो पांडव भवन की भट्टी में हम पहुंचना माना हमारा कुछ पुण्य का कर्म है, उस कर्म के आधार पर फल पा रहे हैं, यही कृपा है। तो यही बाबा का तपस्या भूमि, जब हम कॉलेज लाइफ में पढ़ते थे तो हमारी फ्रेंड उसने एक ही सीढ़ी का चित्र दिखाया और कहा देखो हम आपको सत्यनारायण की सच्ची कथा सुना रहे हैं और ये सच्ची कथा जो सत्यनारायण की है ना उसकी लास्ट में आरती होती है, उस आरती में लिखा है बूढ़ा ब्राह्मण बनके कंचन महल किया। तो उसको भी तभी तभी ज्ञान मिला था और हमको आके ज्ञान सुनाने लगी कि भगवान बूढ़े ब्राह्मण के तन में आया है और आकर के ये सृष्टि को कंचन महल बना रहा है। ये सृष्टि है ना अभी विनाश, ऐसा ही बहुत उस टाइम की हमारी एज क्या थी और उस टाइम पर एकदम बस डायरेक्ट जैसे वो सुनी वैसे हमको सुनाया कि ये दुनिया है ना अभी ये विनाश हो जाएगा और विनाश होने के बाद एक गोल्डन दुनिया आएगा, स्वर्ग आएगा और स्वर्ग में चलना है तो ये सच्चा ज्ञान सुनना है, बस इतना ही वर्ड वो हमारे दिल के अंदर चला गया। तो बाबा बोलते हैं ना बच्चे जो कल्प पहले वाली आत्माएं हैं, दैवी कुल की आत्माएं हैं, उनको क्या चाहिए, छोटा सा क्ल्यू चाहिए, इशारा चाहिए, एक शब्द चाहिए। इसलिए भक्ति में भी क्या करते हैं गुरु लोग, अपने शिष्य को बस एक मंत्र देते हैं और वो मंत्र के आधार पे अपना गुरु के पीछे शिष्य बन जाता है, उसको फॉलो करता है। तो बाबा के जो दैवी कुल के बच्चे हैं, ब्राह्मण बच्चे हैं, जो सत्युग में त्रेता युग के संस्कारों को लेके आए हैं कलयुग तक, उनको बाबा का ज्ञान बस इशारा चाहिए, थोड़ा सा चाहिए, आत्मा जग जाती है और ऐसा जग जाती है बाबा पर क्या हो जाते हम फिदा हो जाते हैं, है ना, सभी फिदा हुए वाले परवाने हैं ना, फिदा हुए वाले परवाने ही तो इधर अपना समय दे रहे हैं, उनका श्वास यहाँ चल रहा है, अपने हाथों से कर सेवा कर रहे हैं। तो फिदा हुए परवाने ही बाबा से ये चांस लेते हैं, चांसलर बनते हैं, प्रैक्टिकल स्वरूप बनते हैं, सेवा में लग जाते, सिर्फ बातों में नहीं रहते हैं लेकिन प्रैक्टिकल उनसे बाबा करवाता है, जो करवाना है प्रैक्टिकल जो हम कर्म करते हैं वो ही हमको शक्ति देता है। वो ही हमारा भविष्य का जमा करता है। तो मधुबन में जो हमारे सालों से योगी तपस्वी भाई, हमारी दादियां, हमारी दीदियां, हम कभी कभी सोचते हैं बाबा ने हम बहनों को तो कितना सेंटर्स दिए, कितनी बाहर की सेवाएं दिया, लेकिन मधुबन में कितना हमारे भाइयों की कितनी ग्रेटनेस है। एक ही डिपार्टमेंट, अभी सपोज कोई रोटी बना रहा है तो रोटी बना रहा है, सब्जी काटने वाला सब्जी काट रहा है, लेकिन हम चार बार छह बार आठ बार वो काम करेंगे तो थोड़ा बोरिंग होता है। लेकिन जीवन के अंदर इतना त्याग करना, इतना एक ही सेवा में लगन लगा के और वो सेवा करते, सब कुछ पहुंचा के अपनी स्थिति को उतना महान योगी बनाना बहुत ग्रेट है, बड़ा त्याग है। तो उस त्याग का फल हम सबको मिल रहा है। हम यहाँ पहुंच रहे हैं, हम इतना रिफ्रेश हो रहे हैं, हम लाइट हाउस बन रहे हैं, माइट हाउस बन रहे हैं, इन सब की सेवा का सारा शेयर होने के कारण हम आज इस दिन पे, इस समय पे इतना चांस ले रहे हैं। तो जो सेवाधारी हैं और जो यहाँ रहने वाले हैं, जिनको पांडव भवन की सेवा का चांस मिल रहा है, वो भी कम नहीं है। एक बार एक ग्रुप आ रहा था, शिविर वाला ग्रुप आया था पांडव भवन में, तो यहाँ शिविर करने के बाद वापस आके अपना अनुभव बताते हैं ना, हमको कैसा लगा, बाबा के घर आए तो हमको क्या मिला, कौन सा अनुभव हुआ। तो नए नए शिविर के लिए आए, तो शिविर जो ग्रुप आया वापस सेंटर पे आके अपना अनुभव सुनाने लगा। तो एक भाई ने बताया, पहले तो पांडव भवन ही था, नीचे शांतिवन नहीं था। तो एक भाई बताया कि मैं नया नया पांडव भवन में शिविर के लिए आया था, तो शिविर में हमको सब ज्ञान सुनाया, सब कुछ कोर्स का तीन दिन कराया, फिर हमको एक दिन पूरा पांडव भवन का भ्रमण सारा विजिट कराया, हिस्ट्री हॉल, चार धाम दिखाया, फिर हमको किचन में लेके गए, भंडारे में लेके गए, और भंडारे में देखो ये भगवान का, भोलेनाथ का भंडारा है, इधर इतने इतने हजारों लोगों का भोजन बनता है, और सब योग युक्त होके परमात्मा के सिमरण में, याद में भोजन पकाते हैं। तो वो भाई है ना, वो भंडारे को देखा, भंडारे को देखा तो वहां पर 100-200 माताओं का ग्रुप था, बड़ा शिविर था। तो माताएं सब बाबा की याद में रोटी बेल रहे, बहुत शांति से बाबा की याद में मग्न होके हाथों से रोटी चल रही है। तो उसने वो सारा देखा, पूरा विजिट करके वापस सेंटर पे आए, तो सेंटर पे आके बोला, मेरे को एक बात यहाँ का बहुत दिल को टच करके गया कि जहाँ इतनी माताएं साथ में रह के इतना शांति से योग युक्त होके रोटी बना रहे, माना जरूर कोई महान शक्ति है, ऐसा कार्य महान शक्ति द्वारा ही हो सकता है। वो बात से उसको बाबा मिल गया ना, उस बात के कारण वो बाबा का बच्चा बन गया। ये ऐसा कॉमन स्थान नहीं है, ये बहुत महान शक्ति वाला स्थान है, ये कार्य डायरेक्ट परमात्मा द्वारा चल रहा है। तो इतना सारा भाग्य देने वाला भाग्य विदाता कौन है, कौन है? शिव बाबा, मेरा बाबा। बाबा बोलते हैं ना, क्या बोलो, दिल से मेरा बाबा बोलो। किसका बाबा है?
मेरा,
खास मेरा बाबा है। तो जो मेरा बाबा है वो देखो एक एक के ऊपर बाबा कितना बड़ा दया दृष्टि रखा है, दुनिया के कोने कोने से, कहां गली में, कहां एरिया में, कहां देश में, कहां कहां आप रहते और कहां कहां से किसने ढूंढा। आज भी हम भट्टी में क्लास कर रहे थे ना, तो हमको आत्म प्रकाश भाई ने बोला, देखो आपने बाबा को ढूंढा या बाबा ने आपको ढूंढा, किसने ढूंढा? तो सब बोले बाबा ही ढूंढा, हम थोड़ी बाबा को पा सके, हम तो जन्म जन्म बहुत ढूंढा, फिर भी हम अपने पुरुषार्थ से, हम अपने एफर्ट से, हम अपने कोशिश से भगवान को नहीं पा सके, लेकिन बाबा भगवान हमको आके पकड़ा, हमको आके ढूंढा, हमको आके हाथ दिया, है ना, बाबा ने खुद ढूंढा ना हमें। तो बाबा हमारा साजन है, उसने हमें ढूंढ के निकाला है, बाबा मेरा बाप है जिसने हमें ढूंढ के निकाला है। तो जिस बाबा ने हमको करोड़ों में से सिलेक्ट किया, एडॉप्ट किया, गोद का बच्चा बनाया और रोज नशा चढ़ाता है, मैं तुम्हें क्या बनाने के लिए ढूंढ के लाया हूं? क्या बनाने के लिए मैं तुमको अपना बच्चा बनाया? कभी कभी बाबा बोलता है, बच्चे दुनिया तो अनाथ आश्रम है, ये अनाथ आश्रम में मैं आया और मुझे जिस बच्चे को अपना गोद का बच्चा बनाना था उसी को ही मैं लाया। सब बच्चे रहते हैं, समझो कोई माँ बाप है, साहूकार माँ बाप है, अनाथ आश्रम में जाता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो सबको लेता है क्या? क्या करता है? एक को एडॉप्ट करता है। तो ऐसे बाबा भी हमें नशा चढ़ाता है, बच्चे तुम कम नहीं हो, तुम इतने ऊंचे हो, सारे संसार में करोड़ों मनुष्य भरे पड़े हैं, क्या क्या कहां कहां कितने बैठे हैं, लेकिन हमको बाबा ने उनमें से सिलेक्ट किया, अपना बच्चा बनाया। बनाने के बाद क्या कर रहा है बाबा? बना के बिठा दिया, क्या करा रहा है? लायक बना रहा है। पहले अपना गोद का बच्चा बना के लायक बना रहा है। अभी साहूकार माँ बाप है, गरीब के बच्चे को लाया तो उसको गरीब थोड़ी रहने देता है, उसको बोलता है ऐसा पहनो, ऐसा चलो, ऐसा खाओ, ऐसा रॉयल रहो, सिखाता है ना। अभी तो किसके पास आ गए हो, किसका बच्चा बन गए हो? तो वैसे बाबा हमको गोद का बच्चा बना के लायक बनाता है। कैसे बनाता है लायक हमको? पढ़ाई से, मुरली से। बाबा की मुरली हमारे अंदर कैपेबिलिटी डालती है, हमको कैपेबल बनाती है, लायक बनाती है। और जितना हम आत्मा लायक बनते जाते हैं, जितना आत्मा के अंदर बाबा की पढ़ाई लायकता देती जाती है, उतना ऑटोमेटिक क्या होगा, उतना ऑटोमेटिक क्या होगा? जितना हम लायक बनेंगे, जैसे किसी को पढ़ाई कर करके अच्छा डिग्री मिल गया तो अंडरस्टूड है ना, उसके हाथ में वो लायक है, वो डॉक्टरी का लायक है, वो बैरिस्ट्री का लायक है, तो वो कॉन्फिडेंस से जाके जॉब ले सकता है। अगर है ही नहीं लायक तो नहीं मिलेगा। तो बाबा भी हमको क्या करता है? लायक बनाता है। तो लायक बनाने के बाद अपने आप हमारे द्वारा सेवा होती है। सेवा करना नहीं होता है, सेवा कर्मों से होती है। तो हमारे कर्म जो बिगड़ गए थे उसको बाबा संवारता है, उसको बाबा करेक्ट करता है, उसको बाबा लायक बनाता है। फिर उसके बाद श्रेष्ठ कर्मों से अपने आप सेवा होती है, उसको सेवा करना नहीं पड़ता है बच्चों को, अपने आप। अब देखो, क्योंकि हम आत्मा लायक है इसलिए कैसा देखेगी, कैसा देखेगी, कौन से नियत से देखेगी? रूहानियत। तो नियत में क्या भरा हुआ होगा? रूह, रूह भरा हुआ होगा, जिस्म नहीं होगा, रूह होगा। तो बाबा लायक बनाया, रोज रोज रोज। इतना अच्छा टीचर है, इतना सुप्रीम है, इतना ग्रेट है, ग्रेटेस्ट है कि कभी थकाई नहीं। 80 साल से भगवान, 85-88 ईयर से भगवान रोज लायक बनाने के पीछे है हमारे। रोज, वो भी इतना प्यार, इतना दुलार लेके। आप 10 बार किसको समझाने के बाद संकल्प तो आते हैं, अरे कुछ सुनते ही नहीं, कुछ चेंज ही नहीं होते, लेकिन बाबा रोज एक नया प्यार लेके आता है, एक नया टेक्निक। रोज का मुरली पढ़ो, उसमें एक अलग आनंद है बाबा का, एक अलग। बाबा हर टाइप से हमें सुख देता है, हर टाइप से बाबा हमको रोशनी डालता है, हर टाइप से बाबा हमको अच्छा बनाने के लिए आया है। तो जितना बाबा से अच्छाई लेते जाएंगे, अच्छाई आ जाने के बाद अपने आप अच्छाई सेवा करती है। हम सेवा नहीं करते हैं, अच्छाई हमारे द्वारा सेवा करती है। तो ऐसा श्रेष्ठ, अच्छे से अच्छा बनने के लिए, बहुत अच्छे से अच्छे बाबा के पास आने के बाद हमारा हर कर्म कैसा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैंने आज भी बाबा बोला हाय हाय नहीं, वाह वाह वाह, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह मेरा श्रेष्ठ कर्म, और वाह मुझे श्रेष्ठ भाग्य देने वाला बाबा। तो संडे भी बाबा क्या बोला, भाग्य विधाता बाबा खुद आया है और तुमको भी क्या बना रहा है। बाबा बहुत बड़ी चीज देता है, बहुत बड़ा सम्मान देता है। बाबा बोला मैं वरदाता हूं, मैं भाग्य विधाता हूं, तुम बच्चों को मैं मास्टर भाग्य विधाता बनाने आया हूं, वरदाता बनाने आया हूं। कहां हम कलयुग में रहने वाले और बाबा हमको मास्टर वरदाता बना रहा है, भाग्य विधाता, दूसरे का भाग्य बनाने का चांस दे रहे। तुम भी वो चांस लो, दूसरों का भाग्य बनाने की विधि सिखाओ। मैंने तुमको सिखाई, तुम कितनों का भाग्य बनाना है, भगवान जैसा काम अभी हम इस सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल के लाइफ में कर सकते हैं। तो ये ब्राह्मण कुल में बाबा ने हर एक को चुन के लाया, अपना बनाया और रोज क्या करा है, उड़ाता है, उड़ाता है, क्या बोलता है, चलना नहीं, रुकना नहीं, क्या करो, उड़ो। और जिनको तो पांडव वन में आने का चांस दिया वो तो क्या होंगे, उड़ते ही रहेंगे ना। चलो शांति स्तंभ में पांव रखो, उड़ना चालू, हिस्ट्री हॉल में आ जाओ, बाबा को देखो, देखो वहां पहुंच जाते हैं। तो बाबा तो सदा उड़ा ना, हाँ बाबा को देख के हम थोड़ी ठहरेंगे, हम थोड़ी रुकेंगे, हम थोड़ी पीछे जाएंगे, हम भी उड़ते रहेंगे। बाबा के कमरे में जाओ, हम जब फर्स्ट टाइम बाबा के पांडव भवन में आए थे, ऐसा गेट के अंदर पांव रखा तो सामने प्रकाशमणि दादी दिखे, एकदम एंजल, एकदम फर्स्ट मोमेंट, कल्प के इस बार के फर्स्ट मोमेंट में जब हमने देखा पांडव भवन के गेट के अंदर एंट्री डाला, बोर्ड था, मीठे बच्चे ये आपका अपना घर है, आपका स्वागत है, पहले एक छोटा बोर्ड लगा हुआ था, बाबा बाहें पसारे है ना अभी भी। तो ऐसा जब हम स्टेप इन किया तो ऐसा प्रकाशमणि दादी एकदम एंजल जैसा दिखी। फिर फर्स्ट टाइम हम जब बाबा के रूम में गए तो हमको विश्वास ही नहीं हुआ कि वो ट्रांसलाइट है, वो एक चित्र है, ऐसा लगा ही नहीं, ऐसा लगा बाबा बैठे है लाइव बाबा बैठा है। तो ये बाबा का चैतन्य भूमि है, तो यहां पर चैतन्य में हमको बाबा देवता बना रहा है। कैसे बना रहा है, सेवा का चांस देके बना रहा है, स्थिति ऊंची बना रहा है। तो जितना इस चांस को लेते जाएंगे चांसलर बनते जाएंगे, जितना चांसलर बनेंगे दूसरों का भाग्य बनाते जाएंगे। हिस्ट्री हॉल में आ जाओ, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी, बाबा का मूल मंत्र, जितना निरहंकारी बनेंगे उतना, जितना निरहंकारी ईगोलेस, नो ईगो, क्यों ईगो, किस कौन करा रहा है, मैं कर रहे क्या, मेरा है कुछ, अगर बाबा नहीं चाहता तो हम हिल सकते क्या, तो किसका ईगो करना, किसके लिए ईगो करना, जबकि हमारा कुछ 0.1% भी नहीं है तो हमको ईगो कहां से आना। तो बाबा इसलिए हमेशा निमित्त निर्माण, जो निमित्त है वो निर्माण अपने आप बन जाएगा। तो निरहंकारी माना हमेशा डाउन टू द अर्थ झुकेगा, झुकने वाला फल देता है। अकड़ के रहेंगे, ईगो में रहेंगे तो जो विशेषताएं है वो भी उड़ जाती है। इसलिए बाबा के बच्चे हमेशा झुकते हैं, माना फलदाई बन जाते हैं, और जो फलदाई बनता है वो हमेशा मीठा रहता है। तो यही बाबा, वही साकार बाबा, भले आज अव्यक्त है लेकिन हम बच्चों को अव्यक्त होते हुए भी, अव्यक्त पाठ पूरा होने के बाद भी बाबा हमको कौन सी फीलिंग दिला रहा है, साकार पाठ पूरा हो गया, अव्यक्त पाठ भी पूरा हो गया, लेकिन फिर भी मेरा मीठा बाबा माता पिता बन के क्या करा रहा है, साकार का अनुभव करा रहा है। ऐसा नहीं बाबा हमसे दूर है, बाबा अव्यक्त वतन में बैठा है, नहीं बाबा हमको इधर बैठा है, बाबा बैठा है ना, बाबा खड़ा है, बाबा बाजू में है, बाबा आगे है, बाबा मेरे बैकबोन में है, उसके बिना हम स्ट्रेट भी नहीं हो सकते। तो बाबा करण करावनहार स्वामी सतगुरु, जिन गुरुओं ने भी थोड़ा बहुत भगवान का ज्ञान लिया, थोड़ा बहुत पहचाना, उन्होंने भी क्या किया, अपने अहंकार को खत्म कर दिया। वो भी एक ही बात बोलते गए, करण करावन हार है। थोड़ा सा पहचाना होगा, थोड़ा सा संगम युग का कणा दाना लेके गए होंगे, और जब अपने टाइम पर परमधाम से नीचे आए तो संसार को यही सिखाया, कराने वाला है। हम कौन है? सिर्फ कठपुतली है, सिर्फ हम जो आगे दिख रहे हैं ना, हाँ, सबकी डोरी पीछे है, वो दिखता नहीं है, क्योंकि सारी क्रेडिट बच्चों को देना चाहता है, सब कुछ बच्चों पे अर्पण करने के लिए। इतना पवित्र, इतना साफ, इतना ऊंचा, इतना विशाल दिल कोई हो सकता है? देहधारी हो सकता है जो सब कुछ आपके लिए सब कुछ अर्पण कर दे और अपने लिए इतनी छोटी भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखे? किसी में दम नहीं है। एक भगवान के अंदर इतनी पवित्रता है, इतनी उसमें शुद्धता है, इतनी स्वच्छता है, इतना क्लियर है, जो सब कुछ देना जानता है। लेना भगवान को नहीं आता है। एक बार हमारे बड़े दीदी, उन्होंने क्लास वालों को क्लास कराया, तो क्लास कराते क्या बताया, देखो ये भूमि है, धरती है, ये धरती में एक बीज डालो तो धरती माँ क्या करती है, कितना देती है, हर साल इतना अनेक देती है। और भगवान क्या है, वो तो प्रकृति धरती का भी मालिक है, उसके सेवा में अगर कुछ भी करोगे तो कितना आएगा। बाबा बोला पूज्य स्वरूप, पुजारी स्वरूप, भक्ति मार्ग में जब तुम पूज्य स्वरूप हो, सब में तुमको रिटर्न मिलता है, क्योंकि इस समय तुम डायरेक्ट भगवान के डायरेक्ट यज्ञ में कर रहे हो, तो आपको मल्टीपल होके कितना आने वाला है। हर जन्म अभी का बेस है, जो अभी कर रहे हैं ये बेस है, ये फाउंडेशन है, यही हमको 21 जन्म नहीं खिलाता है। कंप्लीट हम जिस दिन ज्ञान में आए ना, जिस दिन हम बाबा के पास इस कल्प में आए, उस दिन तक बाबा ने हमको खिलाया है, फिर वापस अकाउंट में डिपॉजिट करने के लिए उस दिन लेके आया। हमने कब तक खाया संगम की कमाई? संगम की कमाई कब तक खाई? जिस दिन हम ज्ञान में वापस, जिस दिन आपको डेट याद होगा ना, हम किस दिन बाबा के बच्चे बने हैं, उस दिन तक कल्प पहले वाली कमाई खाई है, फिर कमाई पूरी हुई बाबा वापस डिपॉजिट करने के लिए लेके आया। माना ये जन्म कितना बड़ा आधार है, 84 जन्म, एक जन्म भगवान के लिए करो, तन लगाओ, मन लगाओ, धन जो लगाओगे वो मल्टीपल करके देता जाएगा, देता जाएगा। एक माताजी का अनुभव है, एक माताजी थी, उसको बाबा को घर देने की बहुत इच्छा, मैं मेरा बेटा है बाबा, मैं मेरे बेटे को तो घर किराए पे तो मैं नहीं रखने दूंगी, मेरा बाबा है, बाबा का घर किराए पे होता है क्या, बाबा का घर अपना रहना, बाबा क्यों किराए के मकान में रहना। उसको बहुत इच्छा, बहुत प्यार बाबा से, उसको इतना सेवा के लिए दिल, उसके घुटने में बहुत दर्द होता। बाबा मुरली में बोला, बच्चे जब तक तुम किसी को संदेश नहीं देते हो, जब तक किसी को बाबा का परिचय नहीं देते हो, तुम खाना भी नहीं। हमारी दादी जानकी बोलती है ना, बाबा बोलता था बच्चे मुंह में डालना नहीं जब तक किसी को परिचय नहीं दे के आए, संदेश नहीं दिया तब तक भोजन का एक कण भी नहीं रखना। तो माता को नशा चढ़ा, बाबा ऐसा मुरली में बोले, तो पैम्पलेट साथ में लेके, पांव दुख रहा, घुटने दुख रहे, लेकिन बाबा बोला तुम पहले बाबा का सेवा करो, उसके बाद मुंह में भोजन डालना। तो सिटी में तो क्या रहता है, फ्लैट्स रहते हैं, ऐसा सीढ़ी चढ़ो, किसमें लिफ्ट होता है किसमें लिफ्ट नहीं होता है, तो सीढ़ी चढ़ने में घुटना तो दर्द करेगा, घुटने के प्रॉब्लम वाले को तो घुटना दर्द कर रहा, उसको ऐसा ऐसा करके सीढ़ी चढ़ के जाके बेल, कॉलिंग बेल होता है ना, वो बजा के दरवाजा खोलने, अभी सुबह सुबह माता खाने के पहले सेवा करने के लिए जाना, क्योंकि बाबा बोला मुरली में तो बाबा की बात तो मानना ही मानना है। तो कॉलिंग बेल बजा के अभी कोई कोई मनुष्य इतना सुबह उठेगा, कोई कोई तो प्यार से लेते, हाँ अच्छा माता जी तो क्या है, कोई कोई तो चालू हो जाते, यही टाइम है आपको, ये टाइम नहीं दिख रहा, फिर उनको भी पैम्पलेट हाथ में दे के थैंक यू बोल के 8 घर जाके घूम के फिर भोजन खाना। तो वो माता जी ने बताया, देखो मेरे को तो बाबा को किराए के मकान में नहीं रखना है, मुझे बाबा को अपना घर चाहिए, अपना घर दिलाना। तो उसने, उस अकेली चलती थी, उसके पति को उसके बच्चों को भू भू करके बाबा का घर अपना बना के बाबा को बिठाया, और इतना खुशी उसके मन में। देखो जो संगम पर बाबा को अपना घर देता है, 84 जन्म बाबा उसको कभी किराए के मकान में नहीं रखता है, हर जन्म में उसको अच्छे से अच्छी व्यवस्था रखेगा बाबा। तो जिस प्रकार से हम दिल से करते हैं, भगवान बंद जाता है, आपको कभी भी वो बिना घर के नहीं रख सकता है। तो बाबा बोलता है बच्चे श्वास जो सेवा में लगाता, संकल्प जो सेवा में लगाता, जो अपना कर्म सेवा में लगाता, जो सेवा लगा तन मन धन जो प्रकार से लगाता, आज हमको पट्टी में बताया बाबा, बताया कि कल्प संकल्प बोलते ना, संकल्प तो संकल्प में क्या आता है, संकल्प, तो जो अभी संकल्प करते हो ना, ये संकल्प क्या होता है, पूरे कल्प में आ जाता है। तो कितना सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल है, ये ब्राह्मण कुल हमको देवताई जीवन, क्षत्रिय जीवन, वैश्य जीवन, शूद्र जीवन में भी श्रेष्ठ संस्कार दिलाता है। हाथी कितना भी छोटा हो जाए फिर भी हाथी है ना, हाथी को कितना भी छोटा करो फिर भी क्या है, हाथी तो हाथी है। तो भले हम देवता से क्षत्रिय बन गए, क्षत्रिय से वैश्य बन गए, वैश्य से शूद्र में बन गए, तो भी हमारा दुनिया के कंपैरिजन में श्रेष्ठ संस्कार है, था। तो बाबा कहते ना हाथी को, उसकी जो हाथी की शक्ति है ना, उस दिन हम एक सुन रहे थे, हाथी जब आगे चलता है तो बहुत सारे लोग उसको नमस्कार करते हैं और पीछे कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन हाथी आगे नमस्कार करने वालों को भी नहीं देखता, पीछे मेरे कितना भौंक रहे वो भी नहीं देखता, वो उसकी मस्त चाल रहती है। तो जो महिमा में भी फूलना नहीं, ग्लानी में भी छोटा नहीं होना, स्थिति प्रज्ञ, स्थिति एकदम बाबा जैसा। देखो भगवान की कितनी महिमा करते हैं, बाबा फूलते हैं, बाबा को कितना इंसल्ट किया, बाबा बोलते हैं सबसे जास्ती गाली कौन खाया, ना बाबा कम हुआ नहीं हुआ, बाबा को अपना सम्मान है, बाबा का एक स्थिति है। तो बाबा चाहता है मेरे बच्चे भी, नहीं तो हम क्या होते हैं, थोड़ी बात हो गया किसने महिमा किया तो बड़ा ही हो जाते, कोई कुछ बोल दिया तो एकदम सोडा वाटर हो जाते, दिल छोटा कर देते, बाबा बोलते टच मी नॉट, छुई मुई, फटाफट अंदर सेंसिटिव बन जाते हैं। तो बाबा बोलते तुम किसके बच्चे हो, किसके बच्चे हो, सागर के बच्चे हो, कितने विशाल दिल वाले तुम बनना है, किसके बच्चे हो और क्या बनना है। तो तुम्हारी जो शक्तियां बाबा ने तुम्हारे अंदर डाली, बाबा बोला मैं जब परमधाम से संगम युग पर नीचे आता हूं तो मैं सूक्ष्म वतन बना के आता हूं, मुझे हर बच्चे को, जो ब्राह्मण बच्चा है उसको एंजेलिक फॉर्म में लाना है ना, ब्राह्मण फरिश्ता बनेगा, फरिश्ता से देवता बनेगा, सीधा थोड़ी जंपिंग करेंगे देवता बनने के लिए, ब्राह्मण को क्या बनना है, फरिश्ता से देवता बनना। तो फरिश्ता का स्वरूप हर बच्चे का बाबा रेडी रखता है, जैसे गुलजार दादी जब ट्रांस में जाते थे, बाबा इधर ही मुरली सुना रहे थे तभी, तो दादी जब ट्रांस में जाते थे बाबा को एंजल रूप में देखते थे। तो एक ब्रह्मा बाबा सब एंजल रूप में नहीं है, लेकिन हर बाबा का बच्चा ब्रह्मा वंशावली मुख वंशावली सबको बाबा एंजेलिक फॉर्म में पहुंचाने के बाद देवता रूप में लेके जाता है। तो सबको क्या बनना है? फरिश्ता बनना है, एंजल बनना है, एकदम फर्श से धीरे 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 रिश्ता, फर्श पे बैठ के कर्म करते कर्मातीत बनना, कर्म करते कर्मातीत। ये बड़ी चैलेंज है, इसलिए बाबा रोज बोलता है तुम हठयोगी थोड़े हो, तुम कौन हो? तुम तो राजयोगी बच्चे हो, तुम कर्म को थोड़े ही छोड़ते हो, तुम अपनी जवाबदारी थोड़े ही छोड़ते हो, तुम कर्म करते हुए कर्म से दूर रहते हो, कर्म करते हुए, और तुम्हारा कर्म भी परफेक्ट रहता है। ऐसा नहीं बस जैसा तैसा कर्म कर दिया। आज हमको रामनाथ भाई बोल रहे थे कि जितना आत्मा सतो प्रधान बनती है, जितना पवित्र होती है, वो योगी आत्मा का बाहर एक्सटर्नल इंटरनल, बाहर से अंदर से वो बहुत स्वच्छ रहती है। अगर योगी है रियल भी, तो उसका कर्म इतना कौशलम होगा, एक्यूरेट होगा, करेक्ट होगा, जिस घर में वो रहता है योगी, उसका घर बहुत नीट क्लीन, उसके कपड़े क्लीन, उसका हर सामान क्लीन, और स्थिति भी क्लीन। ऐसा नहीं हम तो योगी है, घर में ये उधर वो उधर पड़ा है, बिखेड़ा हुआ है, नहीं, एकदम योगी माना एक्सटर्नल भी आपका हर चीज व्यवस्थित हो, और मन भी स्टेबल हो, व्यवस्थित हो, वो है रियल योगी। तो बाबा में सिखाता है तुम्हारे अंदर जो बाबा ने शक्तियां बढ़ी है, जो गुण बढ़े हैं बाबा ने, इतना तुम्हें लायक, रोज रोज बाबा तुम्हारे पर मेहनत कर रहा है, तो उस मेहनत को हमें पहचानना है, भूलना नहीं है। हम क्या हो जाते, इतना मीठा बाबा रोज बोलता है, ऐसा बाबा जो तुमको विश्व का मालिक बनाता है, जो तुमको इतना स्वीट बनाता है, जो तुमको सुख धाम में लेके जाता है, दुखों से छुड़ाता है, ऐसे बाबा को तुम भूल जाते हो क्या? बोलते हैं ना रोज, ऐसा मीठा बाबा उसको तुम भूल जाते हो क्या? ऐसा रोज सिखाता है। तो बाबा हमेशा बोलता है बच्चे तुम्हारी शक्तियां तुम याद रखो। जैसे एक हाथी था, एक राजा के पास अच्छा हाथी था, तो राजा उस हाथी को बहुत प्यार करता था, और जब भी युद्ध करने जाना है उसी हाथी पे बैठ के युद्ध करता था, और हमेशा विजयी बन जाता था। वो हाथी के ऊपर बैठ के जब राजा जिस युद्ध करने में गया वो जीत के आया, तो जब राजा युद्ध में जीत के वापस आता था ना, तो उसका जो बैंड रहता है, ड्रम्स रहते बजाते, विजय का नगाड़ा का अलग एक ड्रम्स रहते हैं, वो विजय जी अभी होती है ना तभी बजाते हैं। तो राजा के साथ जब हाथी भी वापस आता था विजयी होके, तो ड्रम्स बजाते थे उसके राज्य में, तो हाथी वो सुनता था, वो भी खुश हो जाता था, राजा के साथ हाथी भी, हम विजयी बन गए, हम विजयी बन गए। तो क्या हो गया, हाथी थोड़ा ओल्ड हो गया, ओल्ड हो गया, तो एक बार जा रहा था कहां पे, तो एक खड्डे में वो गिर गया, तो खड्डे में गिर जाने से वो फेड अप हो गया, उसको बहुत बाहर निकालने का कोशिश किया, लेकिन वो इतना फेड अप हो गया बाहर आ रहा ही नहीं था, उसको बहुत ट्राई कर रहे थे वो खड्डे से बाहर निकालने का, लेकिन उसको फेड अप होने के कारण, निराश होने के कारण, उसमें उतना उमंग उत्साह नहीं रहा, इसलिए वो बाहर आने का ट्राई थोड़ा किया, फिर छोड़ दिया, फेड अप हो गया। तो बहुत ट्राई किया, ऐसा हाथी हमारा इतना अच्छा है, इतना हमको साथ दिया, उसको ऐसा तो नहीं छोड़ेंगे ना, तो क्या करना, इसको कैसे बाहर निकालना, उसकी उसके अंदर शक्ति अच्छी है, लेकिन वो अभी शक्ति को यूज नहीं कर रहा है, उसका मन उदास है, निराश है, इसको कैसे बाहर निकालना। तो बहुत ट्राई करने के बाद भी नहीं निकल रहा, तो किसी को याद आया, ये हमेशा विजयी होने के बाद जो ड्रम्स बजते थे उसमें ये बहुत खुश होता था, तो ड्रम्स बजाना चालू किया, विजय के नगारे। तो विजय के नगारे जब हाथी के कान में आए ना, तो उसमें उमंग आ गया, प्राण आ गया, खुशी आ गई। फिर क्या हुआ, जब उसको निकालना चाहे तो फटाफट बाहर आ गया। तो हम भी ऐसे, माया ने भी हमको खड्डे में डाल दिया, हम आत्माएं जो इतनी ऊंची थी, विजयी थी, माया के ऊपर जीत पाके विश्व महाराजन विश्व महारानी के संस्कारों वाली थी, वो आत्माएं खड्डे में गिर गई। फिर बाबा क्या किया, क्या करता है बाबा, ड्रम्स बजाते हैं ना रोज, ड्रम्स बजाता है, अरे तुम कौन है, तुम अपना आदि स्वरूप याद करो, अपना अनादि स्वरूप याद करो, तुम पूज्य हो, तुम्हारे ही चित्रों की पूजा हो रही है, तुम इतनी महान आत्मा हो, तुमसे शक्तियां लेके लोग सिद्धि प्राप्त करते हैं। बाबा के लास्ट दो संडेस की मुरली तो बहुत उड़ा रही है। बाबा बोला ना, अगर तुम शरीर से डिटैच होने की प्रैक्टिस करते हो, जितना शरीर से दूर रहते हो उतना जन्मों जन्मों तक तंदुरुस्त रहते हो, तन दुरुस्त रहता है। क्यों? आत्मा ने अपने कोश अपनी सत्यता में लेके गई, आत्मा अपने रियलिटी में लेके गई। देह रियलिटी नहीं है, देह टेम्पररी है, आत्मा रियल है। तो जिस आत्मा ने अपने को रियलिटी में ले लिया, जिसने अपने को रियलाइज कर दिया, रियल आय से खुद को देख लिया, मैं कौन हूं, महसूस कर लिया अपनी सत्यता को, तो अपने को देह से डिटैच, अशरीरी, शरीर से डिटैच होने की जितनी प्रैक्टिस करेंगे बाबा बताए, उतना शरीर अच्छा बनेगा। जितना शरीर से चिपके रहेंगे, जितना इस कचरे से अटैच हो जाएंगे, उतना शरीर में बीमारियां आ जाती है। तो बाबा ने बताया वैरायटी टाइप से, तुम बच्चे क्या करो, कभी विश्व के ग्लोब पर चले जाओ, पूरे विश्व को सकाश दो, कभी बाबा के नैनों के नूर बन जाओ, कभी दिल तख्त नशीन बन जाओ, कभी बीज स्वरूप बन जाओ, लाइट हाउस बन जाओ, माइट हाउस बन जाओ। आज हम जो बट्टी कर रहे हैं, आज हमको सोमान था लाइट हाउस, चलता फिरता लाइट हाउस। तो लाइट हाउस क्या करेगा, किरने देगा, किरने देगा। बाबा हमेशा क्या करता है, सूरज क्या करता है, देता रहता है, देता रहता है, लेता है क्या, हमेशा देने में बड़ा सुख है, लेना तो मिट्टी हो जाता है। मैंने दो दिन पहले एक पढ़ा स्टोरी कि एक भिखारी था, वो भिखारी क्या करता है, रोज सुबह निकलता भिक्षा लेने के लिए, एक झोली पकड़ता, उस झोली में पहले क्या करता, थोड़ा पैसा डाल देता, तो सोचता थोड़ा पैसा देके जो पहला मेरे को भिक्षा देगा वो सोचेगा इसके पहले भी इसको किसने भिक्षा दिया तो मैं भी डाल देता हूं, समझा। वो झोली में कुछ डाल देता था, चावल डाल देगा तो चावल दे के दूसरा भी लगेगा, अरे कोई इसको चावल दिया मैं भी दे देता हूं। तो ऐसा रोज सुबह निकलता था, झोली में कुछ डाल के निकलता था। तो एक दिन निकलता है, सोचता है आज मेरे को बहुत भिक्षा मिलना चाहिए, मेरे झोली में बहुत आना चाहिए, ऐसा सोच के सुबह सुबह चले जाता और मन में सोचता आज मुझे राजा मिलना चाहिए, राजा मेरी झोली भरपूर कर देना चाहिए। तो सचमुच थोड़ा आगे जाता है तो राजा का रथ आ रहा है, तो ये बड़ा खुश हो जाता, आज मेरी झोली में कितना राजा डाल देगा। तो जैसे ही रथ के सामने भिखारी जाता है, राजा रथ को रोक लेता है और राजा रथ से नीचे उतरता है, तो इसको वंडर लगता है, ये क्या हो रहा है, राजा रथ से नीचे उतर के आ रहा मेरे पास। तो बोलता है राजा आप उतर के इधर आए, तो बोला देश के ऊपर संकट आ गया है, आज के दिन इस सुबह को जो मेरे को पहला व्यक्ति मिलेगा वो मेरे को भिक्षा देना, मैं नहीं देगा आज, मेरे को भिक्षा देना। तो इसको तो सरप्राइज हो जाता है, मैं क्या भिक्षा देता, और भिखारी था हमेशा रोज भिक्षा लेता था, तो उसका संस्कार था लेने का, देना का तो उसको मालूम ही नहीं, रोज क्या काम करना है, लेना है लेना है लेना है। अभी राजा पूछ रहा है तू आज मेरे झोली में कुछ तो डाल दे, ना नहीं बोलना आज कुछ डाल। अभी इसके मन में धड़कन बढ़ गई, मैं क्यों दूं मैं देने मन दे नहीं सकता, मुझे लेना आता है। उसके मन में दुख आ रहा, मैं क्या दूं, तो थोड़ा झोली में चावल है तो झोली में हाथ डालता है, चावल पकड़ता फिर छोड़ देता, क्योंकि उसका नेचर देने का नहीं है। तो फिर सोचता है अभी वो राजा बोलते है तू मना नहीं करना, कुछ तो दे दो आज मुझे। तो आखिर एक चावल उठाता है, एक चावल उठाता है और वो क्या करता है, राजा के झोली में डाल देता है और राजा बस वो एक चावल लेके रथ पे चढ़ के एकदम चले जाता है और इसका दुख भरता है, मेरा एक चावल मेरा एक चावल चला गया, मैं दे दिया आज मेरा एक चावल। फिर ऐसा सारा दिन भिक्षा लेके, अच्छा भिक्षा मिलता है उसको बाद में दूसरे से। फिर घर आता है, घर आता है, उसकी पत्नी बोलती वाह आज तो बहुत भिक्षा लेके आया। तो उसको पत्नी को बोलता अरे तू पागल मत बनो, आज मैंने एक चावल दे दिया, लिया तो जो लिया वो अलग है लेकिन मेरे को बहुत आज फील हो रहा है, आज मेरे झोली से एक चावल चले गया। तो उसकी झोली को पलटाया तो जो लिया था सब मट्टी बन गया, एक चावल सोने का था। तो उसमें क्या कंक्लूजन बताया कि जो हम देते हैं ना वो सोना बनता है। बाबा भी हमको क्या सिखाता है, लेवता नहीं क्या बनो, देवता। जो दोगे वो सोना बनेगा, हीरा बनेगा, डायमंड्स बनेगा, रतन बनेगा और तुमको जन्मों जन्मों तक चलाएगा। बाबा साकार मूली में तो ऐसा फील कराता है, बाबा बोलता है देखो बच्चे तुम्हारा धर्म कितना ऊंचा है। घड़ी घड़ी बाबा को सोमनाथ मंदिर याद आता है, उस दिन बोला देखो किसी चर्च में डायमंड्स लगे, किधर लगे डायमंड, सोना इतनी बाह लेके जाने के बाद भी सोना। तो सोचो भगवान के यज्ञ में हमने कणा दाना किया और बाबा ने क्या दिया, क्या दिया, सोने हीरों के महल, दीवारों में सोना, मन सोना, वैभव सोना। भगवान बोला साधना करो, साधन तो अपने आप आते हैं, वो तो शैडो है, तुम आगे चलो लाइट में, शैडो पीछे अपने आप आता है। तो बाबा कहते बच्चे तुम बस ज्ञान धन से संपन्न बनो, वो धन की तो चिंता ही नहीं करो, वो धन तो तुम्हारा छोड़ेगा ही नहीं, जहां तुम वहां सब साधन, वहां सब संपन्न होगा। तो सिर्फ हमें क्या करना है, हमारे मीठे बाबा को दिल से फॉलो करना है, सच्ची दिल साहेब राजी। तो हम सब कौन है, सब कौन है, सच्ची दिल वाले। कुछ नहीं चाहिए बाबा को हमसे, भगवान को क्या चाहिए कुछ, हाँ सोच भी नहीं सकती। भगवान तो सब बोलता है तेरे दिल को साफ रखो, बाकी सब काम मेरा है, तेरा कुछ भी नहीं है। तो मीठे बाबा को बहुत 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 क्या करना, याद करना, गड़ी गड़ी थैंक यू बोलना, घर से निकलना मीठा बाबा मेरे साथ चलो। उस दिन एक भाई बता रहा था, मैं बाबा को जब घर से बाहर निकलता हूँ, बाबा इधर क्यों बैठे हो आप, आजो मैं अकेला क्यों जाऊँ, आजो हम चलेंगे साथ में। तो जिधर भी जाना मेरा बाबा साथ है। तो जाते टाइम भी बाबा से हमको एक बार राजू भाई बताया, कभी भी हम बाहर निकलते बाबा के रूम में बाबा से छुट्टी लेके बाबा को साथ लेके, बाबा बड़ा है ना घर का, तो जब भी हम आना जाना कुछ भी करना बाबा से जरूर पूछना, बाबा से दृष्टि लेके शक्ति लेके बाबा को साथ लेके और बाबा का ही सेवा संपन्न करना है ना। तो रोटी बेलते, सब्जी काटते, सफाई करते, भोजन बनाते, आज भी बाबा याद करा, भोजन बनाते भी बाबा याद रहना। भोजन बनाते सूरज भाई तो एक बार बहुत अच्छा लगा, मेरे मन को टच हुआ कि आधा घंटा भोजन बनाते हो, 40 मिनट्स बनाते हो, वो आपका टाइम मेडिटेशन का है, वो आपका टाइम नहीं है, वो सिर्फ योग का टाइम है। और उसमें एक्सपेरिमेंट करो, शक्ति डालो, किरणें डालो, जब भोजन बन रहा है सब्जी डाल रहे हो, घुमा रहे हो, रोटी बेल रहे हो, किरणें डालो, डालने के बाद जो बना भोजन बाबा की याद में बनाया वो खिलाओ और देखो उनमें परिवर्तन। प्रैक्टिकल तुम्हारे हाथों से बनाए हुए भोजन को खाने के बाद जो खा रहे उसका वृत्ति कैसे चेंज हो रहा है, वो कैसे आत्मा अंदर 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 वो भोजन कैसे उस आत्मा को शक्ति देता है, अंदर अंदर आत्मा चेंज हो जाएगा। इसलिए तो राज्यों को जादू बोलते ना, पहले पहले क्या बोलते थे, जादू है इधर गए दृष्टि दिया गुम, इधर जादू है क्या। तो रियल बाबा का बहुत बड़ा ये क्या है, मैजिक है, बहुत बड़ा बाबा का टेक्निक है। बाबा का ज्ञान छोटी चीज नहीं है, बाबा का ज्ञान सबसे बड़ा साइंस है, बाबा का हर बात साइंस है, डीप है, गहरा है, विशाल है। बाबा बोलते हैं ज्ञान जितना तुम लोगे उतना वेल्दी बनोगे, योग जितना अशरीरी बन के ऊपर चलोगे उतना हेल्दी बनोगे। तो कैसे वेल्थ जमा हो रहा है, कैसे हेल्थ बन रहा है, अब भी पूरा संस्कार अब भी भरना है। तो एवर हेल्दी एवर वेल्दी, तो क्या होगा ऑटोमेटिकली एवर हैप्पी बन जाएगा। हेल्दी माना ज्ञान कम अटेंशन देते, योग के ऊपर ज्यादा, तो हेल्दी होगा। वेल्दी नहीं है, बहुत अच्छा हेल्थ है और पैसा ही नहीं है तो खुश रहते पैसा बहुत है हेल्थ साथ ही नहीं दे रहा है तो भी खुश रहते नहीं। तो दोनों बेस है और बाबा कैसे दे रहा है, ज्ञान और योग बल। ज्ञान भी बल है, योग भी बल है। तो इस बल से, ये बल ये शक्ति आज हमको रामनाथ भाई सिखाया, भगवान शक्ति का सागर है, शक्ति है। भगवान को सर्वशक्तिमान बोलते हैं। तो बाबा का जो सर्वशक्तियां है वो शक्तियां बढ़नी, जितना शक्ति आएगी और हमारे कर्मों में जब वो शक्ति को यूज करेंगे तो वो गुण बन जाता है। इसलिए देवताओं को कहते हैं सर्व गुण संपन्न, सर्व शक्ति संपन्न नहीं बोलते, सर्व गुण संपन्न। तो भगवान से शक्ति आता है, वो शक्ति हमारे कर्मों में जब हम यूज करते हैं तो गुण बन जाता है। तो देखो एक एक बाबा का बच्चा जो हमने भट्टी किया, एक एक जो क्लास सुना, ऐसा लग रहा था अरे कितना मंथन है, कितना चिंतन है, कितना बटर निकाल रहे, जितना घुमाएंगे बटर आ रहा है और जितना बटर खा रहे उतना हेल्दी हो रहे हैं। तो ऐसा हेल्दी बन गए ना सेवा करने वाले भी, क्योंकि जहां पांडव भवन में सेवा कर रहे वो वाइब्रेशन तो जा रहे, ऐसी भूमि पर सेवा कर रहे तो जो भट्टी चल रही है, भट्टी करने वालों के इतने वाइब्रेशंस और आप इतना मेहनत करके टाइम टू टाइम सबको पहुंचा रहे हो तो आपको तो कितने वाइब्रेशन पहुंच रहे हैं। तो यहां आने वाले सभी सर्वगुण संपन्न, सोला कला संपूर्ण, सब कला, सब कला माना रोटी बेले तो करेक्ट परफेक्ट गोल रोटी आना, संपन्न सब कला माना हर चीज जो करे वो करेक्ट कर। थैंक यू बाबा को, थैंक यू मीठे बाबा को।